ओम शांति। आज विशेष हमारी भट्टी में बाबा के अनुरे रत्न अमूल्य रत्न उषा बहन जी पधारे हैं। हम सब एक हाथ की ताली से बहुत बहुत दिल से आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ऐसे तो उषा बहन को आप सब अच्छी तरह से पहचानते हो, कई बार टीवी में भी ये हंसता हुआ चेहरा देखा होगा, इसलिए अनेक प्रकार की सेवाओं में, देश विदेश की सेवाओं में आप उपस्थित हो। ऐसे आपको वहां जाकर तो सेवा करने का चांस मिलता ही है, लेकिन इससे भी बड़ा चांस मधुवन हेडक्वार्टर में रहते हो तो दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। तो हर रोज एक ग्रुप से नहीं, लेकिन दिन भर में कई ग्रुप्स अलग अलग विभिन्न स्थानों से जो आते हैं, उन्हों को आप अपनी रूहानियत की सुवास या ज्ञान वर्षा जो भी कहो सबसे लाभान्वित करते रहते हो। काफी 35 साल से भी ज्यादा साल आपको ईश्वरीय सेवा में समर्पित होते हुए हैं। राजयोग शिविर के आप माहिर हो, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्स भी आप कराते हो, ऐसे कई प्रकार के कोर्सेस है जो आप ट्रेनिंग भी देते हो और लोगों को भी कराते रहते हो। खास पॉलिटिशियन विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हो, जैसे सुबह में ज्ञान सरोवर मीडिया के लोग आए हैं उन्हों को शिविर कराए, अभी यहाँ भट्टी कराएंगे, शाम को कहाँ और प्रोग्राम होगा, ऊपर नीचे भी आना जाना होता रहता है। जैसे बाबा कहते हैं ना, हमें परम धाम जाओ, नीचे आओ, अभ्यास करो, उन्हों को तन से भी ऊपर नीचे होना है तो समझ सकते, मन भी तो इतना सहज, आत्मा भी ऊपर नीचे हो सकती है, इतने डिटैच है। तो आज हमारी भट्टी में खास अपने अनुभव युक्त क्लास से हमें अनुभवी बनाएंगे, यादगार बन जाएगा। इसलिए आपके लिए यही दिल से निकलता है कि आप चांद से चमकते रहो, फूलों से महकते रहो। हमारी सबकी दुआएं हैं कि आप सदा ज्ञान वर्षा करते रहो। तो अभी हम आपकी ज्ञान वर्षा के नीचे शीतलता का अनुभव करते हुए क्लास सुनेंगे। आदरणीय उषा बहन जी,
ओम शांति। बाबा के मधुबन के बेहद के घर में आप सभी को विशेष लॉटरी लगी है कि जैसे बाबा की ये तपस्या भूमि कर्म भूमि रही, जहां पर वो पावरफुल वाइब्रेशंस बाबा मम्मा सहित सभी महारथी दादियों का इस भूमि के ऊपर विशेष भूमि को ताकत मिली हुई है, सकाश मिली हुई है। सेंटर्स पर तो कई बार आपने भट्टी किया होगा, लेकिन ये चांस जो मिला है ये गोल्डन लॉटरी है। और उसमें भी आज की जो बाबा की मुरली सुनी, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य बाबा ने हम बच्चों को फिर से स्मृति दिलाई और यही कहा कि जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण, और जितना उसके स्मृति स्वरूप रहेंगे उतना नशा भी चढ़ेगा, वैसे कर्म भी होने लगेंगे, वैसे ही अपना बर्थ राइट जो है उसको जीवन में अनुभव कर पाएंगे। बाबा की एक एक बात जैसे सुनते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, तो ऐसे लगा कि हम सभी कौन से प्रकार के बच्चे हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, हाँ, जो सुनना, समझना और प्रैक्टिकल करना, तीनों एक समान है। क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन जो है ऑर्डिनरी जीवन तो नहीं है, ये बहुत ऊंची जीवन है। क्यों ऊंची जीवन है? ब्राह्मण जीवन ऑर्डिनरी जीवन नहीं है। क्यों ऊंची जीवन है? स्वयं परमात्मा आते हैं इसलिए। और जो चढ़ती कला है, इसलिए ब्राह्मण जीवन स्वयं भगवान का दिया हुआ जन्म है। बाबा ने जन्म दिया है हम सभी को, है ना। बाबा की नजर हम पर पड़ी है, अब भगवान की नजर जिस पर पड़ जाए वो कोई साधारण आत्मा तो होती नहीं है। वो आत्मा कितनी महान होगी सोचो। दुनिया में भी ऐसा कोई नहीं होगा जिस पर ईश्वर की नजर पड़ जाए। तो भगवान की जब नजर पड़ी तभी हम ब्राह्मण बन सकते हैं, नहीं तो ब्राह्मण बनने का सौभाग्य नहीं मिलता है। इसीलिए विशेष है। बाबा भी हमेशा जब अव्यक्त मुरली चलाता है तो इसी रूप में हमें देखता है और कहता है, तुम बच्चे विशेष आत्माएं हो, क्योंकि भगवान के चुने हुए रत्न है, भगवान के चुने हुए फूल है। सल्ला के बगीचे में हम सभी ऐसे चुने हुए फूल है, तो इसीलिए ये जन्म हमारा विशेष हो जाता है। लेकिन बाबा के बनने के बाद और भी विशेष हो जाता है। कैसे? क्योंकि बाबा खाली चुनता नहीं है, लेकिन साथ में बाबा के पास हमारे लिए एक पूरी प्लानिंग है कि इस आत्मा से मुझे क्या सेवा करानी है, है ना। तो हर एक आत्मा के लिए बाबा के पास पूरा प्लानिंग है कि उस आत्मा से बाबा को कौन सी ऐसी सेवा करानी है दुनिया के अंदर, और वो ऐसी कोई न कोई विशेष सेवा होती है, तभी विशेष आत्मा बन जाते हैं। तो वो विशेष सेवा करने के लिए भी बाबा ने कोई न कोई विशेषता हमें वरदान रूप में दिया हुआ है, और वो विशेषता वरदान रूप में इसीलिए मिली है ताकि उस विशेषता का प्रयोग हर कर्म में हम करते जाएं, और जितना उसको प्रयोग करते जाएंगे जीवन के अंदर, कर्म के अंदर, उतना वो विशेषता हमारी खिलती जाती है, डेवलप होती जाती है, उसका निखार आता जाता है। इसीलिए बाबा कहते कि समय प्रति समय से जब बट्टी होती है तो हम और भी अपने आप को निखारते हैं, उस विशेषता को भी निखारते जो प्रभु वरदान है, प्रभु के द्वारा दी हुई गिफ्ट है हमें। एक ऐसा उपहार है ये ब्राह्मण जन्म मिलते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई विशेष आत्मा का जन्म होता है तो कितनी गिफ्ट्स उसको मिलती है, और उसमें कोई कोई गिफ्ट्स तो ऐसी विशेष होती है, है ना। तो इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को ये वरदान जो है विशेषता का, वो जन्म के गिफ्ट के रूप में देता है, और फिर बाबा के पास पूरा प्लानिंग है कि अब ये वरदान जो मिला उसके आधार से मुझे इस बच्चे से ये सेवा करानी है, और ऐसी सेवा कराएंगे तभी नई दुनिया का भाग्य हम प्राप्त कर सकेंगे। जब तक वो कर्म नहीं करते जो मेरे लिए भगवान ने प्लानिंग करके रखा है, जब तक उस कर्म को हम नहीं करेंगे तब तक वो भाग्य की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान भी जो भाग्य देता है सेवा के फल स्वरूप भाग्य मिलता है, तो उस विशेषता द्वारा बाबा को हमसे कोई विशेष कार्य संसार के अंदर कराना है। और वो विशेष कार्य कैसा होगा कि अंतिम समय उस कार्य के द्वारा भगवान की प्रत्यक्षता होगी। इसीलिए बाबा कहता है मेरा हर बच्चा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा, और जब उस परमात्म प्रत्यक्षता में हम अपना योगदान देते हैं तभी वो भाग्य हमें प्राप्त होता है। ये विशेषता जो बाबा ने दी है हमें वरदान रूप में संगम युग पर, यही जीवन जीने का एक उद्देश्य देती है, ब्राह्मण जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करती है ना कि ब्राह्मण जीवन क्या है। लोगों को दुनिया के अंदर अपनी लाइफ से थक गए हैं, थक गए ना दुनिया में। लोगों को देखो जैसे कोई उद्देश्य नहीं, कोई दिशा नहीं उनके जीवन में, तो थकावट महसूस होती है, कंटाल जाते हैं। और इसीलिए कई लोग तो इतने कंटाल जाते हैं तो जीवन को भी समाप्त कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन बाबा के बनने के बाद हमारे अंदर एक नई उमंग आ जाती है, नया उत्साह आता है, क्योंकि बाबा ने जो विशेषता भरी है या ये जो गिफ्ट मिली है ये हमें एक दिशा देती है कि अब हमें अपने जीवन को कैसे अर्थपूर्ण जीवन बनाना है। और वो अर्थपूर्ण जीवन बनाने में, उस उद्देश्य को जीने के लिए जो भी पुरुषार्थ हम करते हैं वो पुरुषार्थ हमें हर रोज नए से नया अनुभव कराता है। जितना हम उस विशेषता का प्रयोग करते जाते हैं जीवन के अंदर, उसके स्मृति स्वरूप होते जाते हैं, उसको निखारते हैं, तो हर रोज एक नया अनुभव उसके आधार पर, एक नया संकल्प उसके आधार पर प्राप्त हो जाता है। देखो भक्ति में भी लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हे प्रभु हमें शक्ति देना, यही कहते हैं ना, शक्ति मांगते खास करके। कई बार वो भक्ति के संस्कार जो है ना ज्ञान मार्ग में भी आ जाते हैं कि योग में बैठते हैं तो बाबा से क्या कहते हैं कि बाबा शक्ति देना, है ना। अब शक्ति किस लिए मांगते हैं, शक्ति किस लिए मांगते हैं ब्राह्मण बनने के बाद, शक्ति किस लिए मांगते हैं बाबा से? क्योंकि हर ब्राह्मण जानता है मेरी कमी कमजोरी कहाँ है, हर एक को मालूम है। ब्राह्मण बनते इतना ज्ञान तो आ जाता है कि जीवन के अंदर कमी कमजोरी कहाँ है ना, कहीं किसी में आलस्य होगा, किसी में और कोई कमी कमजोरी, जो भी कमी कमजोरी है हर एक के अंदर, हर एक अच्छी तरह से समझ सकता। भक्ति में जब तक होते तब तक हम अपनी कमी कमजोरी को नहीं जानते, लेकिन ज्ञान मिलते ही हमें अपनी कमी कमजोरी स्पष्ट दिखाई देने लगती है कि हाँ यहाँ मेरी कमी कमजोरी है। अब बाबा से जब शक्ति मांगते हैं कि बाबा शक्ति देना ताकि मैं ये कमजोरी को जीत सकूं, ताकि मैं अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर सकूं, क्योंकि मालूम है कि जब तक ये कमजोरी है पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा। और तीव्र तो करना चाहते हैं पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते लेकिन वो विघन बन जाता है, बार बार वो कमजोरी जो है बीच में आ जाती है, विघन बन जाता है। तो बाबा से इसीलिए शक्ति मांगते हैं कि बाबा इतनी शक्ति देना ताकि ये कमजोरी के हम के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सके। अब बाबा कोई जादू की छड़ी दे देगा कि ये लो कमजोरी खत्म करने के लिए ये शक्ति ले लो, ऐसे कहेगा क्या? तो वो एक कैलेंडर नहीं है कि जब भी हमने भगवान से शक्ति मांगी तो भगवान हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां, और वो परिस्थिति जब पार करने की हिम्मत आती है, जब परिस्थिति को पार करने का संकल्प करते कि नहीं इसमें मुझे विजयी होना है, चाहे कितने भी विघ्न आए मेरे सामने, लेकिन जब उसमें दृढ़ संकल्पधारी हो जाते हैं तो उस दृढ़ संकल्प से ही शक्ति मिलने लगती है, बाबा की शक्ति का अनुभव होता है। और जब पास हो जाते हैं ना तो महसूस होता है सचमुच बाबा की शक्ति मिली तो पास कर दिया मैंने, कितनी खुशी होती है। मेरे बस की तो बात नहीं थी लेकिन आज महसूस हुआ कि बाबा की शक्ति मुझे मिली अदृश्य रूप में और तभी हमने ये परिस्थिति को पार किया। ये हर एक का अनुभव है कि नहीं है, है ना? तो बाबा की शक्ति मिलती है लेकिन वो शक्ति का अनुभव करने के लिए वो परिस्थिति तो आएगी। जब वो परिस्थिति को सुलझाएंगे, उसको पार करेंगे, तब अंदर में वो शक्ति को महसूस कर पाएंगे और उस समय इतनी खुशी होती है कि वाह बाबा, आज जो है हमने ये कमजोरी के ऊपर जैसे विजय प्राप्त कर लिया। और जैसे एक एक कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त करने लगते हैं तो कितनी खुशी होती जाती है। एक एक कमजोरी, कईयों को कितने विघ्न आए होंगे, जैसे रोज मुरली क्लास शुरू किया तो परीक्षाएं आई होंगी, लेकिन दृढ़ संकल्प, अरे क्लास छोड़ना नहीं कुछ भी हो जाए, विजय हो गए, रोज क्लास चालू हो गया, पवित्रता की धारणा शुरू किया तो कितने विघ्न आए। कमजोरियां भी होंगी लेकिन संकल्प कर लिया दृढ़ तो बस उसको भी पार कर लिया और पवित्रता की शक्ति को भी धारण कर लिया। किसी को खान पान की कमजोरी होंगी, बाहर खाने की आदत पड़ी हुई होंगी तो वो बीच में विघ्न पड़ा लेकिन उसका भी दृढ़ संकल्प किया, पार कर लिया। तो एक एक क्षण में जब भी परीक्षाएं आई और आपने दृढ़ संकल्प किया तो पास हो गए कि नहीं हुए? हो गए ना? और उस समय महसूस होता है कि हाँ, बाबा की शक्ति से ही हम पार कर सके, बाबा शक्ति देता है, ये विश्वास हो गया, है ना? इसका मतलब कि बाबा के वरदान को, जो विशेषता बाबा ने वरदान के रूप में हमें दिया है, उस वरदान के जितने प्रयोग करते जाते हैं तो हमारी एक एक कमजोरी को हम समाप्त कर सकते हैं, सहज समाप्त कर सकते हैं। तो ये वरदान जो है ये एक शस्त्र है कि कैसा भी, जैसे किसी के हाथ में अगर तलवार हो, चाकू हो, तो उसके पास में जाने से तो लोग डरेंगे ना। तो इसी तरह ये शस्त्र जो है वरदान, बाबा की विशेषता का जन्म से ही जो हमें मिला है, ये एक ऐसा शस्त्र है जो कमजोरी भी उसके आगे आने में डरती है, ऐसा शस्त्र है। इसलिए बाबा कहते हैं शस्त्रधारी, देवियों को भी दिखाते हैं, देवताओं को भी दिखाते, तो स्थूल में थोड़ी यही तो शस्त्र है हमारे ब्राह्मण जीवन के, है ना? दूसरी बात यही है कि यही विशेषता के प्रयोग से संपूर्णता तक की मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण बन सकते हैं, इतनी ताकत है उसमें, उस वरदान में। बाबा ने जो विशेषता का वरदान दिया उसमें इतनी शक्ति है कि वो हमें संपूर्णता तक की मंजिल को प्राप्त करा सकती है, इतना ऊंचा ले जा सकती है। कैसे कैसे ले जा सकती है इतना ऊंचा हमें, जो संपूर्णता प्राप्त कर ले? बाबा की जब भी अव्यक्त मुरली सुनते हैं ना, तो हर मुरली कोई ना कोई विशेष बात के ऊपर होती है। टॉपिक के, खास करके अव्यक्त मुरलियों को देखो। कभी बाबा साइलेंस पर चलाएगा कि साइलेंस की शक्ति क्या होती है, कभी बाबा सत्यता की शक्ति पर चलाएगा, तो कभी बाबा पवित्रता की शक्ति पर चलाएगा, है ना। और फिर उसकी गहराई बताते हैं। गहराई बताने से पहले बाबा सवाल करते, ऐसा समझते हो, महसूस करते हो, हा? बाबा के सवाल होते हैं। आधा पेज जितना सवाल होता है बाबा का, और उन सवालों को पूछते बाबा एक प्रकार का रियलाइजेशन हमें कराते हैं, और जिसके अंदर वो विशेषता होगी ना, क्या करेंगे, वो जोर जोर से मुंडी हिलेगी उनकी। आज तो बाबा ने मेरे लिए ही सुनाया, आज तो बाबा ने मेरे लिए मेरे को, और वो उस दिन मुरली में नींद नहीं आएंगी, इतना जोर जोर से सिर हिलेगा, नींद नहीं आएंगी, है ना। खुशी होती है, आज तो बाबा ने जैसे मेरे ऊपर ही बताया। और उसके बाद जैसे ही बाबा उसके गहराई में ले जाना शुरू करते हैं, और गहराई में ले जाते हुए जैसे उसकी संपूर्ण स्टेज क्या होती है वहां तक ले जाते हैं। लेकिन जब उन स्थिति के ऊपर ले जा सकते हैं, तब जैसे हमारे लिए एक रास्ता क्लियर होता है कि अब मुझे किस बात पर पुरुषार्थ करना है, हम कहां तक पहुंचे हैं, अब कैसे पुरुषार्थ करेंगे, तो वो संपूर्णता की मंजिल हमारे लिए सहज हो जाए। अच्छा, जिसकी वो विशेषता नहीं होंगी को क्या लगेगा, आज तो बाबा की मुरली इतनी डीप थी, पता नहीं कब ये होगा, या होगा या नहीं भी होगा हमसे, है ना, ये महसूसता आती है, पता नहीं आज तो बाबा ने बहुत गहरी बातें बताई, हमारे में तो थोड़ा भी नहीं है, ये महसूस करने लगेंगे, है ना। और एक दूसरे से चर्चा भी करेंगे, पता नहीं हमारे अंदर तो ये बात तो है नहीं। लेकिन हर बार बाबा जब अव्यक्त मुरली चलाता है, कोई न कोई ऐसी विशेषता के ऊपर जब चलाते हैं, कभी हमारे योग्य के मुरली भी यहाँ जाती है कि हाँ बाबा ने आज हमारे लिए चलाई, ऐसा महसूस होने लगता है। और धीरे धीरे उस, इसलिए भक्ति में कहावत है, चाहे कोई भी रास्ता ले लो, पहुंचना तो उधर ही है ना, कोई भी रास्ता ले लो, चाहे सत्यता वाला मार्ग ले लो, उस विशेषता वाला ले लो, पवित्रता वाला ले लो, साइलेंस वाला ले लो, जो भी मार्ग ले लो, पहुंचना कहाँ है, कहाँ है पहुंचना, संपूर्णता हमारी मंजिल है ये संपूर्णता। और इसीलिए कोई भी गुण या शक्ति या विशेषता को लेकर आप चलो और उसी को निखारने लगो, डेवलप करते जाओ, तो उस मंजिल को प्राप्त करना आसान हो जाएगा, है ना। जैसे उदाहरण मैं दूं आपको कि हमारी तीन दादियों को तो देखते हैं हम, प्रकाशमणि दादी को भी देखा हम सभी ने, दादी जानकी को भी देखा, दादी गुलजार को भी देखा। तीनों दादी की अपनी अपनी विशेषता है। बड़ी दादी जी की विशेषता क्या थी, हा? प्रेम स्वरूप थी। बड़ी दादी जी की विशेषता थी प्रेम स्वरूप, है ना, इतना प्यार की मूरत थी वो। क्लास में आती थी, बस यही पूछती थी, सभी ठीक हो, किसी की तबीयत खराब तो नहीं हुई हो, हाँ अगर कोई टेंट में रहा पड़ा हो तो भी दादी पूछती थी, टेंट वाले सभी ठीक है, किसी को कोई सेल्वेशन चाहिए तो बताना, हाँ। कितना प्यार, वो क्लास शुरू होने से पहले जो प्यार होता था ना दादी का, उसी पर सब न्योछावर हो जाते थे, है ना। बस दादी ने पूछ लिया, किसी को कोई तकलीफ होती थी तो भी क्या हो जाता था, गायब हो जाती थी, टेंट में रह। आजकल बाबा दादी का पार्ट बजाता है, बाबा बजाता है ना, व्यक्त बाबा बजाता। बड़ी दादी जी की ये विशेषता थी, और उसी विशेषता के आधार पर वो संपूर्णता तक पहुंच गई। अच्छा दादी जानकी की विशेषता क्या है? दादी जानकी की विशेषता क्या है? ज्ञान की मूर्ति है, ज्ञान की देवी है, ज्ञान की देवी है ना दादी जानकी, देखो ज्ञान की देवी। दादी जानकी के मन में हमेशा यही भाव रहता कि कोई भी मेरे पास आए और खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ ज्ञान की अंजलि मिलनी चाहिए। और दादी जानकी ने ही ये देखो अपनी विशेषता के आधार पर वरदान के कार्ड्स निकाले, जो जाता है उसको वरदान का अंजलि दादी अपनी तरफ से दे देती, ज्ञान के दो महावाक्य जैसे दे देती है। दादी जानकी हमेशा कहती है मैं अगर क्लास न कराऊं तो बीमार हो जाऊंगी, वो क्लास कराती है तो स्वस्थ हो जाती है, ठीक हो जाती है, उसकी बीमारी भाग जाती है, है ना। दादी जानकी हमेशा कहती है कि मेरी अर्थी भी जो जाएगी ना वो बोलते बोलते जाएगी, है ना। भावार्थ ये कि दादी जानकी की विशेषता जो है, दादी जानकी की विशेषता है कि वो ज्ञान की देवी है, तो भाई कुछ तो ज्ञान रतन मिलना ही चाहिए उस आत्मा को, कोई भी मेरे पास आए और बिना ज्ञान के दो शब्द लिए जाए ये हो नहीं सकता है, तो ज्ञान के वरदान बांटती है, ज्ञान की देवी है वो। और दादी गुलजार की विशेषता क्या है? शांति की देवी है, साइलेंस। दादी अगर क्लास में भी आ जाए, अगर ना भी बोले, बस दादी की दृष्टि मिल जाती है, भरपूर अपने आप को महसूस करते हैं, साइलेंस में ही जैसे सब कुछ दे देती है। और तीनों संपूर्णता की ओर पहुंच रही है, दादी जानकी भी संपूर्णता की ओर जा रही है, दादी गुलजार अपनी विशेषता से संपूर्णता की ओर जा रही है, और प्रकाशमणि दादी अपनी विशेषता से संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। तीनों की अपनी अपनी, कोई एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करता है। जानकी दादी कभी ये नहीं सोचती है बड़ी दादी ने ऐसा पूछा इसलिए मैं भी क्लास में पूछू, नहीं। वो आज भी अगर पूछती भी है तो क्या कहती है, बड़ी दादी जी आ करके जैसे आप लोगों को कह रही थी या कहती थी, ऐसे आज जैसे बड़ी दादी जी के ही वो संस्कार प्रत्यक्ष होकर के दादी पूछ रही है सबसे, मैं पूछ रही हूँ ये नहीं कहेंगी, कभी नहीं कहेंगी, बड़ी दादी जी पूछ रही है जैसे वो हमेशा पूछ, माना बड़ी दादी जी जो है, बड़ी दादी जी ने कभी ये नहीं सोचा मैं गुलजार दादी की तरह हो जाऊं, बोलू ही नहीं, शायद साइलेंस में बैठ जाऊं, नहीं, या मैं जानकी दादी की तरह बन जाऊं बोलते जाऊं, नहीं, वो भी नहीं। कॉपी नहीं की है एक दूसरे को कि इसने ऐसा किया इसलिए मैं भी ऐसा करूं, नहीं। वो जो विशेषता उनको बाबा ने वरदान रूप में दिया था उसी विशेषता का संपूर्ण निखार, और इसीलिए बड़ी दादी जी के लिए बाबा ने भरी सभा में कह दिया था वो 95% पास हो गई है, पास हो गई है, है ना। माना उसी विशेषता को उसने ऐसा निखारा। जानकी दादी कभी नहीं सोचेगी मैं गुलजार दादी जैसे बन जाऊं, बोलू ही नहीं, अगर दादी क्लास में आए और नहीं बोलेंगी तो सबको संकल्प चलेगा, क्यों नहीं बोल रही है, क्यों नहीं बोल रही है, संकल्प चलेगा ना, भाई दादी जानकी क्लास में और बोले ही नहीं, वो भी नहीं रह सकती है और बच्चे भी नहीं रह सकते कि दादी आई, माना कुछ तो रतन मिलने ही चाहिए उनसे। लेकिन गुलजार दादी के लिए कभी नहीं, गुलजार दादी आई और न भी बोला तो भी जैसे ऐसा लगता है दृष्टि से तृप्त तो हो गए, वो साइलेंस की शक्ति उनके क्लास के समय या योग के समय भी इतनी साइलेंस हो जाती है कि वो साइलेंस का प्रवाह जैसे पूरे डायमंड हॉल में भी फैल जाता है, ये उसकी विशेषता है ना, उसी से संपूर्ण। और ये लोगों ने इस तरह से इस विशेषता को निखारा है कि द्वापर के बाद ये एक रास्ते बन जाते हैं प्रभु प्राप्ति के लिए, है ना। जानकी दादी ने जो ज्ञान के रत्न हमारे साथ शेयर किए संगम युग पर, उसका रास्ता बन गया द्वापर युग से के सत्संग का महत्व। दुनिया के अंदर सत्संग कब से शुरू हुआ? द्वापर से शुरू हुआ, लेकिन ये किस बात का यादगार है? संगम युग में दादी जानकी ने जो ज्ञान रत्न बांटे हैं, वो सत्संग के रूप में भक्ति मार्ग में भी एक रास्ता बन गया भगवान की प्राप्ति के लिए। जो आज दिन तक महात्माएं भी उस रास्ते पर चारों तरफ सत्संग करा रहे, कथा करा रहे, कथा करा रहे, कथा करा रहे हैं। ये कथा क्या है? दादी जानकी की कथाएं हैं, है कि नहीं? एक रास्ता बन गया। अच्छा, दादी गुलजार जी का साइलेंस की विशेषता को ऐसा निखारा जो उसका रास्ता बन गया, क्या? मौन का महत्व, है ना। इसलिए भक्ति में भी आप देखो कई ऐसे मौनी बाबा हो गए, बोलना ही नहीं है 15 दिन का। आज भी वो एक आश्रम है जहां जाते हैं, इगतपुरी के पास में गोइंका जी का आश्रम, जहां 15 दिन का मौन, 1 महीने का मौन, बस उनका यही है कि सत्संग नहीं करना, हमको सत्संग बिल्कुल नहीं चाहिए, मौन में रहना है और मौन में रह करके अपने मन को वश करना है। लोग कहते हैं अपने अनुभव में कि हाँ 2-4 दिन थोड़ा मुश्किल लगता है, फालतू विचार बहुत चलते हैं, लेकिन वो लोग वहां कोठरी में कुछ नहीं देते हैं आपको, ना कुछ न्यूज़पेपर देते, कुछ नहीं पढ़ने को देते हैं, इसलिए बाहर के विचार फिर धीरे 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 समाप्त तो हो जाते हैं और एकाग्रता। तो एक रास्ता बन गया, मौन का एक रास्ता बन गया कि प्रभु प्राप्ति के लिए मौन बहुत आवश्यक है। जितना वाणी के ऊपर संयम होगा उतना मन को सहज वश कर पाएंगे। ये एक भक्ति मार्ग का रास्ता बन गया। और बड़ी दादी जी का जो प्रेम का रास्ता है वो क्या है? भक्ति मार्ग में यादगार कौन सा है? खाली मीरा नहीं, भजन। लोग भजन गा करके बस झूमते हैं, है ना। भजन माना क्या? भगवान से प्यार के जो शब्द है, प्रीत के जो शब्द है, वही तो भजन है ना। भजन क्या होता है? भगवान की महिमा गाते हैं, प्रेम से वो भगवान की महिमा करते हैं। तो भजन ये किसका यादगार है? बड़ी दादी जी का। तो एक ने भजनों का रास्ता बता दिया भगवान में मगन होने का, और उसके भी कई ऐसे भक्त निकले भजन गाते रहे और मगन होते रहे और सचमुच बड़ी दादी जी के रास्ते पर चलते रहे। एक जानकी दादी के रास्ते पर चले, कथाएं, बस जहां कथा होगी वहां बैठ जाएंगे, कथा होगी वहां बैठ जाएंगे, है ना। और एक मौन का रास्ता। तो तीनों दादियों ने अपनी विशेषता से तीन रास्ते, भगवान को मिलने के ये रास्ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आपको जो विशेषता वरदान रूप में मिली है उसको पहचानो कि बाबा ने मुझे कौन सी विशेषता दी है, और मुझे इसीलिए इधर उधर देखना नहीं है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या। हरे को अपनी विशेषता मिली है, उस विशेषता के आधार पर वो कार्य कर रहा है। जैसे ये दादियों ने एक दूसरे को नहीं देखा, वो अपने आप में लगे रहे पुरुषार्थ में और उसी का ही एक रास्ता बन गया, तो हम भी अपनी विशेषता को पहचान कर उसको इतना कार्य में लगाएं, इतना निखारें उसको, इतना डेवलप करें कि हमारे भी एक यादगार भक्ति मार्ग में एक रास्ता बन जाए, रास्ता बन जाए, है ना। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं सी फादर फॉलो फादर करो, इधर उधर देखना नहीं है मुझे, देखना ही नहीं है मुझे, है ना। अगर देखेंगे तो मैं इसके जैसा बनूं, मैं इसके जैसा करूं, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी वैसा करूं, नहीं, मुझे नहीं देखना है, बाबा को देखना है और अपनी विशेषता को डेवलप करना है और उसी से ही आप संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे उसको निखारते जाएंगे तो ये विशेषता क्या बन जाएगी पता है? एक मैग्नेट बन जाएगी। और जैसे एक मैग्नेट बनेगा तो जैसे मैग्नेट के मैग्नेट को आप गुजारते जाओ तो आसपास की सारी लोहे की चीजें आकर के चिपक जाएगी ना, तो इसी तरह ये विशेषता एक ऐसा मैग्नेट बनेगा जो उससे कनेक्टेड सारे मूल्य गुण जो है, शक्तियां जो है, वो धीरे धीरे, जैसे साइलेंस की शक्ति है मानो, तो अंतर्मुखता, गंभीरता, ये सारे गुण उस मैग्नेट के तरफ आकर के चिपक जाएंगे, है ना। ज्ञान से संबंधित बातें हैं तो उससे कनेक्टेड जो बातें होंगी वो उसके पास आने लगेगी, मिलनसार होते जाएंगे, ये सब गुण है। तो एक वो विशेषता को डेवलप करो तो वो विशेषता ऐसा पावरफुल मैग्नेट बनेगा कि वो मैग्नेट फिर उससे कनेक्टेड सारे गुण, शक्ति, विशेषताओं को खींचेगा और खींच करके आप इस तरह से सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। ये तरीका है। इसलिए बाबा कहते हैं, दूसरा क्या कर रहा है कि मैं उसके जैसा करूं, तो आपको जो विशेषता का वरदान मिला उसको डेवलप नहीं कर रहे हैं, उसको जो मिला है उसका कॉपी करने का प्रयत्न करेंगे, ना वो बन पाएंगे ना आप खुद बन पाएंगे, तो वहां पुरुषार्थ नहीं होगा। और उस समय फिर नहीं कर पाते हैं तो हिम्मतहीन हो जाते, दिल शिकस्त हो जाते, मैं तो कर ही नहीं पा रही, ये तो कितना कर रहे हैं, मैं तो कर ही नहीं पा रही, मैं तो कर ही नहीं पा रही। लेकिन आप उसके जैसा बनने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? उसकी विशेषता अलग है, आपकी विशेषता अलग है, आप अपनी विशेषता को लेकर के चलो ना। इसलिए बाबा कहते किसी और को नहीं देखो, बस बाबा को देखो और बाबा से प्रेरणा लेते जाओ, बाबा ने कैसे पुरुषार्थ किया और इसी तरह मुझे भी पुरुषार्थ करते हुए सर्वगुण संपन्न बन जाना है। ये है संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त। इसलिए कहा गया कोई भी रास्ता ले लो, पहुंचना तो उधर ही है, कोई भी रास्ता ले लो, आप अपनी विशेषता के आधार पर चलो, उसको पहचानो और उसके आधार पर चलो, आप पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, ये विशेषता को लेकर के आप चलेंगे तो उससे क्या होगा, आपको तीनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। तीन सर्टिफिकेट तो लेना है ना, यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी में तो सर्टिफिकेट तो लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कौन सा सर्टिफिकेट लेंगे? तीन सर्टिफिकेट लेना है ना, स्वयं स्वयं से संतुष्ट, दूसरा मेरे से संतुष्ट और बाबा मुझसे संतुष्ट। तो जब इस विशेषता को लेकर चलेंगे, जैसे कहा दादी जान की आज ज्ञान रत्न बांट दिए, उसकी जो विशेषता है उसको लेकर के चल रही है, तो दिन के अंत में उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हाँ आज मैंने किसी को ऐसे जाने नहीं दिया, दिया मैंने। बड़ी दादी जी को भी आत्मसंतुष्टि होती थी, जो आता था हाँ आओ आओ बैठो बैठो, हाँ ठीक हो, कैसे हो, सारा हाल चाल पूछ लेती थी, है ना। और ऐसा लगता था कोई तो है इस दुनिया में हमें पूछने वाला। उसी विशेषता से दिन के अंत में जब दादी जी बाबा के सामने बैठकर योग करके सोने जाती थी, उसको आत्मसंतुष्टि तो मिलती थी। गुलजार दादी जब साइलेंस का पार्ट बजाती है तो उसको आत्मसंतुष्टि तो मिलती है कि जो बाबा ने मुझ में विशेषता भरी उसको मैंने कार्यान्वित किया सारे दिन में, तो उसकी आत्मसंतुष्टि, तो स्वयं स्वयं से संतुष्ट। अब दूसरा जो कर रहा है वो मैं करूं, मुझे संतुष्टि मिलेगी? जो मुझे करना चाहिए वो भी मैंने नहीं किया तो वो भी संतुष्टि नहीं मिली। दूसरा जो कर रहा है उसके जैसा मुझे बनने का विचार आता है तो मैं वो भी नहीं बन सकती हूँ, तो आत्मसंतुष्टि पहला सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता है। अच्छा, जब उस तरह से कार्य करते हैं, दादी जानकी आज सबको ज्ञान रत्न देती है, बांटती है, सुनाती है, क्लास कराती है, तो सारा ब्राह्मण परिवार खुश होता है? तो ब्राह्मण परिवार का सर्टिफिकेट मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है, है ना? और उसके लिए जब वो उस कार्य में जुटे हुए हैं, अपनी विशेषता को निखारने में लगे हुए हैं, तो दूसरे किसी को ईर्ष्या आएगी नहीं? और ही खुश होते हैं कि हमारी दादी इस एज में भी, 96 इयर्स की एज, आज सभी को हम लोग क्या कहते हैं, सेवा के मैदान में भी जाते हैं तो क्या कहते हैं? हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो अभी 97 इयर्स की है, लेकिन इस एज में भी क्या सारे वर्ल्ड में चक्कर लगाती है, ज्ञान बांटती है, भाषण करती है, सब करती है, कहते हैं ना, तो सारे परिवार को कितना गर्व होता है। किसी को ईर्ष्या नहीं होती है दादी को देखते हुए, गर्व महसूस होता है। तो ब्राह्मण परिवार के संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलता है, मिला। और जब वो उस कार्य में मगन रहती है तो बाबा उससे संतुष्ट होगा, क्योंकि वो फालतू बातें नहीं करती है, व्यर्थ विचार नहीं करती है, व्यर्थ बोलती नहीं है, तो भगवान उससे संतुष्ट है कि नहीं है? तो एक ही बार में तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है कि नहीं होता है? और जितना तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त करते जाओ तो पास विथ ऑनर्स, यूनिवर्सिटी माना क्या होता है, पास विथ ऑनर्स, जब तीनों सर्टिफिकेट मिल गए तो उसी को ही कहते पास विथ ऑनर्स। तो ये सर्टिफिकेट लेना भी सहज, इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य और लक्षण उस अनुसार। आज सारी मुरली जो उसके ऊपर चली, हाँ, दो मुरली थी तो पहली मुरली उसी के ऊपर चली। तो हम बच्चों को भी बाबा ने एक जागृति दी कि हम अपने ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य, माना जो बाबा का दिया हुआ वरदान गिफ्ट के रूप में जो मिला, उसके स्मृति स्वरूप बन करके कितना कर्म करते हैं। तो तीनों सर्टिफिकेट मिलने का वही आधार है, पास विथ ऑनर बनने का वही आधार है कि जब बाबा कहे ट्रिब्यूनल बैठेगी तो उस समय सभी कहेंगे नहीं ये पास है, जाने दो उसको। तो अष्ट रतन में आने का आधार हो गया ना, अच्छा अष्ट नहीं, ये 16108 की माला में तो आने का आधार बन गया कि नहीं बना? ये है विधि 108 में आने की। बाबा कहते हैं ना 108 में जितने भी इतनी लड़ियां लगा दूंगा, कहते हैं ना बाबा भी, बाबा को भी खुशी होती है कि हाँ जितने भी बन जाए उतनी लड़ियां लगती जाएगी, है ना? बाबा तो यही देखना, बाबा की उम्मीद तो देखो हम बच्चों के प्रति कि हर बच्चा मेरा 108 में आना चाहिए। ऐसा कोई बाप होगा दुनिया के अंदर जो सारे बच्चों के लिए ऐसी आश रखे कि मेरा हर बच्चा एक, कोई ना कोई 108 की लड़ी में तो जरूर होना चाहिए, और उसका बनने का आधार यही है। तो इसीलिए कहा कि ये हमें जीवन जीने का उद्देश्य देती है, ये शस्त्र का काम करती है जो कमजोरियों को समाप्त करती है, यही संपूर्णता को प्राप्त करने का आधार है, और यही पास विथ ऑनर्स का सर्टिफिकेट देने का आधार है। ये कितना ब्राह्मण जीवन का महत्व है कि उसमें जो विशेषता बाबा की वरदान रूप में मिली उसको पहचानो। अच्छा, उसकी पहचान क्या है, कैसे पता चले मेरे अंदर कौन सी विशेषता है? कई लोग कहते हैं हमें पहचान ही नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलता है कि मेरे अंदर बाबा ने कौन सी विशेषता रखी है, कैसे पहचाने? क्या होगी उसकी पहचान, कोई बताए भाई हमारे अंदर कौन सी विशेषता है, उसकी पहचान हमें कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे पता चलेगा? हाँ, पुरुषार्थ में आगे जाएंगे और इंटरेस्ट आएगा। सबसे पहली बात कि जब वो विशेषता अनजानेपन में भी आपके प्रयोग में आएगी, कर्म में आएगी। बाबा ने कहा ना बार बार, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अगर, तो वो कर्म में आएगा। तो जैसे ही वो अनजानेपन में भी हमारे कर्म में आती है वो विशेषता, उसके बाद जो हमें खुशी होती है और इंटरेस्ट बढ़ता है उसके आधार पर कार्य करने का, उसमें हमें नींद नहीं आएंगी, भारीपन नहीं लगेगा, टेंशन नहीं होगा। लेकिन जिसकी जो योग्यता होती है, जिसके जो गुण होते, उस अनुसार उसको कार्य मिले तो वो कंफर्टेबल फील करता है, टेंशन नहीं होता है। टेंशन तभी होता है जो अगर हमको आता ही ना हो, हमारा गुण ही ना हो, और वो कार्य हमें सौंपा जाए तो बड़ा टेंशन हो, ये तो हमारे से कैसे होगा, है ना। अगर कोई भाषण करने के लिए कहे और वो विशेषता आपके अंदर है नहीं, आपका दादी गुलजार जैसा पार्ट है साइलेंस में रहकर कार्य करने का, और आपको कोई भाषण करने के लिए बिठा दे तो क्या होगा, कितना टेंशन होगा, क्या बोलेंगे अभी, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यही बोले, यही अंदर संकल्प चलेगा ना, तो टेंशन हो जाएगा। लेकिन कोई अगर कहे आप शांति से बैठ करके ये कार्य करो, हाँ ये मुझे जमेगा। तो जो हमारी विशेषता अनुसार कार्य होगा, कर्म होगा, उसमें हमें खुशी होगी, उसमें हमें एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी, हल्कापन महसूस करेंगे उसमें, किसी के साथ भी हम अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे। और जो कहा मैंने, पूरा बाबा के पास आपके लिए एक प्लान है, और ये विशेषता जो बाबा ने भरी है कि अंतिम समय से पहले बार बार उसको कार्य में लगा करके जितना आप निखारते हैं, फिर बाबा आपसे वो सेवा कराएगा और वो आपके लिए ही होगी। ये डाउट नहीं लाना है, संशय नहीं लाना है कि पता नहीं फिर उस समय तो कोई और कर लेगा, तो और कर कैसे सकता है, भगवान का प्लानिंग आपके लिए ही है। अगर दूसरे किसी को कहा भी जाए ना कि ये कार्य फलाना व्यक्ति कर लेगा, आप रहने दो, क्या होगा, भगवान का प्लानिंग है, उसको आपसे ही करवाना है, उससे नहीं करवाना है। लेकिन किसी ने कह दिया नहीं ये करेगा, आप रहने दो, है ना, क्या होगा, लास्ट मोमेंट जब आएगी ना, लास्ट मोमेंट जब आए वो बीमार पड़ जाएगा। भगवान का प्लानिंग है, उसको आपसे ही कराना है, और उस समय आसपास कोई खड़ा ही नहीं, आप ही होंगे, कहेंगे अभी आप जाओ। इसलिए बाबा कहते एवर रेडी रहना चाहिए। कोई भी सेवा, पता नहीं कौन सा प्लानिंग भगवान का आपके लिए हो, क्या मालूम, है ना। लेकिन उस समय नहीं 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 करना, नहीं 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 मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने एवर रेडी रहना है। कोई भी सेवा के लिए कहा जाए, अरे भगवान का प्लानिंग है, वो आपसे बुलवाएगा, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं तो वो खुद आकर के बोलेगा, तो खुद आकर के आपसे बोलेगा, मुख आपका चलाएगा, आपको बुद्धि दे देगा उस वक्त, और ऐसी ऐसी पॉइंट निकलेगी आपके अंदर से, क्योंकि उसको आपके द्वारा ही कराना है। इसलिए बाबा कहते ना नहीं करना, लेकिन उस समय, तभी बाबा कई बार कहते ना करने वाला नास्तिक, हाँ करने वाला आस्तिक। ना करता है माना उसको मालूम ही नहीं कि भगवान मुझसे क्या कराना चाहता है। वो सेवा का मौका जो आपके सामने आया, लाने वाला तो भगवान है ना, उसको मालूम नहीं था क्या कि आप में योग्यता नहीं है, उसको पता नहीं था, था ना, लेकिन उसको आपके द्वारा ही कराना है, क्योंकि वो भाग्य, उस सेवा का भाग्य आपको ही देना है, उसको आप ही उसके लिए योग्य है उसके हिसाब से। तो इसीलिए ना कर देना उस वक्त, नहीं नहीं मैंने तो कोई और कर लेवे, ये कर लेवे, वो कर लेवे, वो कर लेवे, तो क्या करेगा, भगवान को खुशी होगी, संतुष्टि होगी, भगवान कहते अभी ये ना कर रहा है। इसीलिए बाबा कई बार कहते कई ब्राह्मण बच्चे भी मुझे समझ नहीं पाते कि बाबा मुझसे क्या कराना चाहते, ये समझ नहीं पाते। और इसीलिए जैसे ही दूसरे को दे देते हैं ना, ये करेगा, आपको कहा गया लेकिन आपने कहा ये करेगा। अब वो सेवा वो करने के बाद आपने मना कर दिया तो भाग्य का दरवाजा बंद हो गया। भाग्य का दरवाजा, जो भाग्य आपको मिलने वाला था वो भाग्य को आपने मना कर दिया। इसलिए ना कहना माना नास्तिक। क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि भाग्य का दरवाजा हम अपने लिए बंद कर देते हैं तो नास्तिक नहीं तो कौन हुआ? अरे उसको मालूम है, अगर उसने सेवा आपके लिए लाया है, योग्यता भी समय पर भर देगा वो, लेकिन ना नहीं करना। ना करना माना अपने भाग्य के दरवाजे को बंद कर देना। और जब दरवाजा बंद हो जाएगा उसके बाद पछताते रहेंगे, कोई और को भाग्य मिल गया, और जब वो भाग्य देखते हैं, अरे मैं करती थी तो ये भाग्य मुझे मिलना था, फिर अफसोस करेंगे तो क्या फायदा है ना। तो जो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य था उस अनुसार लक्षण हमारे अंदर नहीं है, इसीलिए वो भाग्य का दरवाजा बंद कर दिया। हमने ही खुद किया तो हम दोष किस पर डालेंगे? किसी पर नहीं डाल सकते, क्योंकि जो भगवान आपके लिए भाग्य लेकर के आया था आपने ठुकरा दिया। अब भगवान का दिया हुआ भाग्य अगर आप ठुकरा देंगे, निमित्त कोई भी बना आपको वो सेवा कराने के लिए या देने के लिए, लेकिन आपने ठुकरा दिया, तो उसको बाबा के प्रति निश्चय बुद्धि कहेंगे। बाबा को बहुत मानते हैं हम, बहुत याद करते हैं, बहुत प्यार है, लेकिन बाबा की तो नहीं मानते ना, कि बाबा की बात को समझ ही नहीं पाए हम। तो बाबा का कार्य करने का तरीका बहुत सूक्ष्म है, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी ब्राह्मण जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं, तीव्र पुरुषार्थ करके उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। दादियों को देख, वो कभी मना करती है, ना 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 मैं नहीं करूंगी, ना 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 मैं नहीं करूं, ऐसे कभी करती है? और हम लोग क्या करते हैं? नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, कोई और कर लेगा तो अच्छा है, कोई और कर। अब भाग्य को मना कर रहे हैं, भगवान भाग्य देने आया है और भाग्य को ही मना कर रहे हैं आप, तो कैसे चलेगा? इसलिए ना नहीं करना। ना करना माना आस्तिक, हाँ करना माना आस्तिक, कि अगर आप में योग्यता नहीं होगी तो भी वो जिम्मेवार है, बैठा है भरने के लिए, और शायद उसको कुछ देना ही था आपको, और देने के लिए ही एक ये मौका आया था, प्राप्त करने के लिए ही, लेकिन ना कर दिया माना गंवा दिया, गंवा दिया, हमेशा के लिए गंवा दिया। कभी कभी हम क्या गंवाते हैं इस ब्राह्मण जीवन में, उसका होश भी हमें नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है। अंतिम समय बाबा साक्षात्कार कराएगा, क्या क्या गंवाया तुमने, ना करके कहां कहां ना किया और क्या गवाया, तब पश्चाताप होगा। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो हमने समझा ही नहीं था। इसलिए आज बाबा ने कहा ना, एक होते सोचने वाले, समझने वाले और करने वाले, एक होते हैं सुनने वाले और भूल जाने वाले। सुना अच्छा लगा और भूल गए, करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन जो जो भगवान के प्रिय है वो समझते हैं, सुनते हैं, समझते और करते हैं। तो हम सभी कौन है? आप सभी कौन हो? हाँ, इंडिया गेट वाले सभी हाँ क्या कहेंगे बहन? हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं ना, कि इंडिया गेट वाले सभी कौन है? नंबर वन वाले, नंबर टू वाले, नंबर थ्री वाले? हाँ, तीसरा नंबर जो बाबा ने कहा, सोच करके, समझ करके, सुन करके, समझ करके करने वाले है ना, ना करने वाले ना करने वाले हैं क्या कोई यहाँ? कोई ना करने वाला तो नहीं है ना? हाँ करने वाले, भट्टी के लिए भी कैसे हाँ करके दौड़ के पहुंच गए ना, है ना? हाँ कर दिया और लॉटरी ले ली, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इसीलिए बाबा जब भी कुछ देना चाहता है तो बाबा का देने का तरीका अपना होता है, बाबा का देने का तरीका ही अपना होता है। बहुत कुछ देना चाहता है बाबा, तो हम बच्चों को इतना प्यार करता है जो बहुत कुछ देना चाहता है। इसीलिए कहते लेने वाला लेने की समझ तो रखे, लेने वाला लेने की समझ रखे, नहीं तो देने वाला तो क्या लुटाना चाहता है अपने आप को भी, लेकिन लेने वाले ही कंजूसी करते लेने में, नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं 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 नहीं, नहीं चाहिए मुझे, दूसरे को दे दो, दूसरे को दे दो, दूसरे को दे। तो ना ना करने वाले तो नहीं है ना कोई यहाँ? सब हाँ जी करने वाले ना, हाँ जी करते हुए आगे बढ़ते चलो, और तीव्र पुरुषार्थ धीरे धीरे उसी के आधार पर होने लगेगा। कर्म योगी प्रैक्टिकल जीवन में आप बन जाएंगे। कर्म योगी उसी का नाम है कि जो बाबा ने विशेषता दी है वरदान के रूप में, उसको जितना हो सके कार्य में लगाते हुए बाबा की याद अंदर से दिल से हर कर्म जब उस विशेषता के आधार पर करते तो थैंक्स निकलता जाता है, बाबा आपको बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हर रोज ये जैसे अंदर से गीत अजपा जाप के रूप में निकलता जाता है, ऐसा है ना। तो दिन के अंत में जब अपने दिनचर्या को देखेंगे तो कहीं पर भी हमें कोई अफसोस नहीं होता है कि आज का दिन जो है उसमें मैं ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, ये करना चाहिए था, ये नहीं किया मैंने, ये नहीं आना चाहिए। तब ब्राह्मण जीवन संतुष्टता और प्रसन्नता वाला बनता जाएगा, ठीक है ना? ऐसा है, ठीक है ना? तो आज विशेष योग में बैठ करके अपने आप को देखना है, बाबा ने मुझे कौन सी ऐसी विशेषता दी है वरदान रूप में, ब्राह्मण जन्म के गिफ्ट के रूप में, जिसको मुझे इतना निखारना है जो संपूर्णता की मंजिल तक पहुंच जाना है, ठीक है? चले तो योग में, ठीक है ना? 12 बजे तक करना है ना योग, तभी हम सभी योग में बैठेंगे। और आज महसूसता की शक्ति को तीव्र करेंगे, रियलाइजेशन पावर, और जितना रियलाइजेशन पावर हमारा बढ़ेगा, जितना अधिक होगा उतना ही जीवन के अंदर आगे बढ़ना सहज हो जाएगा, ठीक है?